अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत दिन के बाद आज फिर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की कुछ चीज़ें देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ग़ज़वे मुता शुरू हो चुका है और उसके मुख्तलिफ मराहिल तय करते करते आज हम जहाँ से शुरू करेंगे वो किताब का पेज नंबर 530 है और टॉपिक क्या है, झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक के हाथ में। अब तो हमें ये बातें भी अजीब ही लगती हैं। आइए देखते हैं कि सहाबे कराम किस चीज़ को कामयाबी कहते थे और किस को नाकामी। तो टॉपिक है झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के हाथ में। क्या वो हाथ होगा जिसको तलवार कहा जा रहा है? इस मौके पर कबीला बनु अजलान के साबित बिन अरकम नामी एक सहाबी ने लपक कर झंडा उठा लिया और फरमाया, मुसलमानों अपने किसी आदमी को सिपह सलार बना लो। सहाबे कराम ने कहा, आप ही ये काम अंजाम दें। उन्होंने कहा, मैं ये काम नहीं कर सकूँगा। इसके बाद सहाबा ने खालिद बिन वलीद को मुंतखब किया और उन्होंने झंडा लेते ही नहायत पुरजोर जंग की। सही बुखारी की रिवायत में ख़ुद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जंगे मुता के रोज़ मेरे हाथ में 9 तलवारें टूट गईं। फिर मेरे हाथ में सिर्फ एक यमनी बाना, छोटी तलवार को कहते हैं, वही बाकी बचा। और एक और रिवायत में है कि मेरे हाथ में जंगे मुता के रोज़ 9 तलवारें टूट गईं और एक यमनी बाना मेरे हाथ में चिपक कर रह गया। क्या पता चला खालिद बिन वलीद की बहादुरी के जौहर। हर इंसान के पास अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई ख़ास ख़ूबी होती है। आपको मुझे अपनी पहचाननी है। हम जब सहाबा के ये किस्से पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं हमारे लिए तो ये नामुमकिन है। ठीक है, मान लीजिए, तो जो मुमकिन है वो तो कीजिए। हमें कौन कहता है हम झंडे पकड़ें? हमारे लिए तो यही काम है कि हम इस कलम की ताकत को लेकर निकलें और पूरी दुनिया से काफिर का नहीं कुफर का ख़ात्मा कर दें। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग मुता ही के रोज़, जबकि अभी मैदान जंग से इस किसी किस्म की इत्तला नहीं आई थी, वही की बिना पर फरमाया कि झंडा जैद ने ले लिया और वो शहीद कर दिए गए। यानी आपको कुछ नहीं पता, कोई टेलीकम्युनिकेशन नहीं, कोई व्हाट्सएप और फेसबुक और CNN और इसी तरह से ख़बरों के लेटेस्ट रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत से आपको वहाँ से ही सब बातों की इत्तला दे दी। तो ये असल में अल्लाह ताला की कुदरत थी कि जो जब चाहे अंबिया कराम को ऐसी ख़बरें दे दे। यानी जंग वहाँ हो रही है मुता पे और आप अपने शहर में लोगों को बता रहे हैं कि अब वहाँ ये हुआ, अब वहाँ ये हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। यकीन करना पड़ेगा, हर चीज़ में बहस और सोच ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। बस सोचिए कि वाकई अल्लाह के नबी सल्लम को अल्लाह ने जो इत्तला दी वो दी। तो आपकी ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज आए कि झंडा जैद ने लिया वो शहीद किए गए, फिर जाफर ने लिया वो भी शहीद कर दिए गए, फिर इब्ने रवाहा ने लिया वो भी शहीद कर दिए गए। इस दौरान आपकी आंखें अश्कबार थी, यानी आंखों में आंसू थे, यहाँ तक कि झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने ले लिया और ऐसी जंग लड़ी कि अल्लाह ने इन पर फतह अता फरमाई। सोचिए, एक के सामने दूसरा कट रहा है और फिर तीसरा फिर उसी को पकड़ लेता है। क्या हम उनकी जगहों पे होते तो इतना सख्त मंजर देखकर हमारे हवास बाकी रहते? तो नोट कीजिएगा, अल्लाह के काम करने वालों को आयरन नर्व्स होना पड़ता है। बड़े से बड़े नुकसान और बड़ी से बड़ी एडवर्सिटी के मुकाबले में उनको हमेशा बाहोश रहना पड़ता है। तो बहरहाल हज़रत खालिद बिन वलीद की इन सारी जंगी कोशिशों और कारनामों के नतीजे में और बाकियों की कुर्बानियों से अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी। आइए देखते हैं कि ख़ात्मे जंग कैसे हुआ। इंतहाई शुजात व बसालत व ज़बरदस्त जानबाजी और जान सपारी के बावजूद, यानी ये सब मुश्किल लफ्ज़, इनका मतलब यह है कि आपको उर्दू ठीक करने की ज़रूरत है। मुराद यह के सहाबा की खूबियाँ बयान की गई हैं कि उन्होंने बहुत बहादुरी से जंग लड़ी, ब्रेवरी से लड़ी। और हैरत किस बात पे थी कि मुसलमानों का ये छोटा सा लश्कर रूमियों के इस बड़े लश्कर की तूफ़ानी लहरों के सामने डटा रह जाए। उस दौर के रोमन को आज के आप वेस्टर्न लोग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के मुकाबले में मुसलमान तो उस वक़्त एक छोटा सा डॉट थे, लेकिन कैसे जंग जीत के, आज भी कोई सोचे तो यकीन में भी ना सके, तसव्वुर ना कर सके जो उस दौर में हकीकत बन गया। लिहाजा इस नाजुक मरहले में हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हों ने मुसलमानों को इस गर्दाब से निकालने के लिए, जिसमें वो खुद कूद पड़े थे, अपनी महारत और कमाल हुनरमंदी का मुजाहरा किया। देख लीजिए, एक बंदे से ला पूरी कौम का काम ले लेता है। रिवायत में बड़ा इख्तलाफ है कि इस मार्के का आखिरी अंजाम क्या हुआ। तमाम रिवायात पर नज़र डालने से सूरत हाल ये मालूम होती है कि जंग के पहले रोज़ हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हो दिन भर रूमियों के बिल मुकाबिल, यानी मद्दे मुकाबिल मुराद है कि उनके कंपटीशन में खड़े रहे, डटे रहे, इस्तकामती। लेकिन वे एक ऐसी जंगी चाल की ज़रूरत महसूस कर रहे थे जिसके ज़रिए रूमियों को मरूब करके इतनी कामयाबी के साथ मुसलमानों को पीछे हटा लें कि रूमियों के ताकुब की हिम्मत ना हो, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मुसलमान भाग खड़े हुए और रूमियों ने ताकुब शुरू कर दिया तो मुसलमानों को इनके पंजे से बचाना सख्त मुश्किल होगा। आपने सूरह तौबा में दो इस्तलाहात पढ़ी, मुतहर्रिफन और मुतहय्यिजन, उसको याद कीजिए, यहाँ वो हो रहा है, यानी ऐसे तरीके इख्तियार करना कि मुसलमान बच भी जाएं और दुश्मन को यही लगे कि ये भाग रहे हैं, यानी पीछे जाते 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 एकदम रुख बदल कर आगे आ जाना। तो यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत नुक्ता है कि एंड वेल इज़ गुड वेल, जंग को ऐसे छोड़ देना कि गुमगु की कैफियत हो, इससे वो मोरल बुलंद नहीं होता और दुश्मनों पर रोब नहीं आता, जो कि एक बहुत अच्छा एंड देने से आता है। हुआ क्या, चुनाचे जब दूसरे दिन सुबह हुई तो उन्होंने लश्कर की हैयत और वजह तब्दील कर दी, यानी जहाँ कुछ लोगों को कल तक खड़ा रखा था उधर से निकाल कर दूसरों को रखा। और आप पीछे सुन चुके हैं कि कैसे उस दौर में जंगें भी बड़ी डिसिप्लिन होती थी, किसने कहाँ खड़ा होना, जैसे मैच में लोग पोजीशन सेट करते हैं, और इस तरह परेड को जहन में ले आइए, ऐसी बेहंगम जंगें नहीं थी कि किसी को नहीं पता कि किस पे गोली चले, बेगुनाह मारे जाएं और दूसरे बच जाए। तो इन्होंने उसकी पूरी तरतीब बदल दी। अगली लाइन जिसको मुकदमा कहते हैं उसको साका यानी पिछली लाइन कर दिया और पिछलों को आगे कर दिया। इस तरह मईमना दाईं तरफ और मईसरा बाईं तरफ, यानी जो दाईं तरफ के लोग थे उनको बाईं तरफ और बाईं तरफ को दाईं में कर दिया। ये कैफियत देखकर दुश्मन चौंक गया और कहने लगा कि इनको मदद पहुंच गई है, क्योंकि वो जो लोग बैठ उनकी वही सेम तरतीब थी, तो कल तक जिन लोगों को वो देख रहे थे आज वो नहीं, कोई और हैं, तो वो समझे कि नए लोग आ गए, हालांकि बस उलट पुलट करके चीज़ को नया कर दिया। इसलिए रोमी शुरू में ही मरूब हो गए, यानी इम्प्रेस हो गए। इधर जब दोनों लश्करों का आमना सामना हुआ और कुछ देर तक झड़प हो चुकी यानी मुकाबला, तो हज़रत खालिद ने अपने लश्कर का निज़ाम महफूज रखते हुए मुसलमानों को थोड़ा थोड़ा पीछे हटाना शुरू किया। लेकिन रोमियों ने इस खौफ से इनका पीछा न किया कि मुसलमान धोखा दे रहे हैं और कोई चाल चल कर इन्हें सहरा की पहनाइयों में फेंक देना चाहते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि दुश्मन अपने इलाके में वापस चला गया और मुसलमानों के ताकुब की ना सोची। इधर मुसलमान कामयाबी और सलामती के साथ पीछे हटे और फिर मदीना वापस आ गए। आपने कभी मुर्गी पकड़ते किसी को देखा हो, पीछे जाते 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 मुर्गी को अपनी तरफ बुलाते हैं और जब वो बिल्कुल आपकी रेंज में आती है तो एकदम पैंतरा बदल कर उसके पास आ जाते हैं। ये खूबसूरत जंगी टैक्टिक्स थी। आप देखिए कि दुश्मन मरूब कैसे होता है, ना वहाँ हथियार, ना इतनी तैयारियाँ, ना कुछ। किस चीज़ ने ये सारी कमी पूरी की? ईमान ने, तवक्कुल ने। तो असल में कल क्या, आज क्या, आने वाले दौर, क़यामत तक के लिए मुसलमानों के लिए सबक है कि रिसोर्सेस को मत बढ़ाने की फ़िक्र करो, अपने ईमान और जज्बे और तवक्कुल को बढ़ाओ, बाकी काम अल्लाह करेगा। आज के दौर की अगर इस जंग को कोई नाम दें तो एक तरफ बड़ी सुपर पावर और एक तरफ कोई छोटे चंद मुट्ठी भर मुसलमान। नतायज लोग न जाने क्या सोचते, लेकिन अल्लाह ताला की शान कि वो कैसे लोगों को दुश्मनों के नरगे से बचा लेता है। फिर जंग के बाद अमूमन हिसाब किताब लगाए जाते हैं कि दोनों तरफ के कितने कौन मारे गए, जैसे वोटिंग के बाद या इलेक्शन के बाद लोग वोट्स गिनते हैं। तो आइए देखते हैं कि जंग में दोनों तरफ से कितने लोग मारे गए। मुसलमान सिर्फ 12 शहीद हुए, रोमियों के मक्तूलीन की तादाद का इल्म ना हो सका। अलबत्ता जंग की तफसीलात से मालूम होता है कि वह बड़ी तादाद में मारे गए। इससे अंदाज़ा किया जाता है कि जब तन्हा खालिद रज़ी अल्लाह अन्हो जब तन्हा हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हो के हाथ में 9 तलवारें टूट गईं तो मक्तूलीन और ज़ख्मियों की तादाद कितनी रही होगी। तो क्या पता चला कि मुसलमान बहुत थोड़े मारे गए। ये भी एक खूबसूरत लीडरशिप होती है कि नुकसान कम से कम हो और फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस मार्के का असर क्या हुआ? तो कह लीजिए कि इस मार्के की सख्तियाँ जिस इंतकाम के लिए झेली गई थीं, मुसलमान अगरचे वो इंतकाम न ले सके, लेकिन इस मार्के ने मुसलमानों की साख और शोहरत में बड़ा इजाफा किया, यानी लोगों के दिलों पर मुसलमानों का रूप तारी हुआ। इसकी वजह से सारे अरब अंगुश्त बदनदार रह गए, यानी अपनी उंगलियाँ मुँह में दबाए रह गए। मुराद है कि देवर अमेस्ड सरप्राइज्ड, क्योंकि रूमी उस वक्त रोए ज़मीन पर सबसे बड़ी कुव्वत है। अरब समझते थे कि इनसे टकराना खुदकुशी के मुतरादिफ है, इसलिए 3,000 की ज़रा जितनी नफरी का 2 लाख के भारी भरकम लश्कर से टकरा कर कोई काबिले जिक्र नुकसान उठाए बगैर वापस आ जाना अजूबा रोज़गार से कम ना था। आप ज़रा लिख के तो देखिए, गिनती ख़त्म होने लगती है। एक तरफ सिर्फ 3,000, 3,000, 3,000, और उसकी ऑपोजिट 2 लाख। आप देखें तो 6 जीरो होते हैं लाख में। कोई तकाबुल भी है क्या? ये उस दौर की कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी। और इससे ये हकीकत बड़ी पुख्तगी के साथ साबित होती है कि अरब अब तक जिस किस्म के लोगों से वाकिफ़ और आशना थे, मुसलमान इनसे अलग थलग एक दूसरी ही तर्ज़ के लोग हैं। अल्लाह ताला की तरफ से मुआइद यानी जिनकी ताईद की गई और मंसूर यानी जिनकी नुसरत की गई, मुराद ये कि मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से मदद भी मिली और आपकी ताईद भी की गई, यानी अल्लाह ताला ने हर तरह से मुसलमानों की मदद की। और इनके रहनुमा वाक़ईतन अल्लाह के रसूल हैं। देखिए, जब ऐसी फतूहात होती है ना तो लोगों को लीडर्स बहुत अच्छे लगते हैं, और ज़रा सी शिकस्त या कमज़ोरी हो तो सबसे पहले लीडर्स पे ही नज़रें जाती हैं कि शायद इन्हीं की कोई प्लानिंग अच्छी नहीं थी। इसलिए हम देखते हैं कि वो ज़िद्दी कबाइल जो मुसलमानों से मुसलसल बरसरे पेकार रहते थे, यानी हर वक्त मुकाबला करने की कोशिशों में थे और धमकियां देते थे, इस मार्के के बाद इस्लाम की तरफ माइल हो गए। चुनाचे बनू सुलैम, अशजो, गतफान, ज़बियान और फजारा वगैरह कबाइल ने इस्लाम कबूल कर लिया। यही मार्का है जिससे रूमियों के साथ खून रेज टक्कर शुरू हुई, यानी ऐसी जंग जिसमें खूब खून बहा, जो आगे चलकर रूमी ममालिक की फतूहात और दूर दराज इलाकों पर मुसलमानों के इकतदार का पेश खेमा साबित हुई। क्या पता चला? बहुत ही अहम बात है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे चैलेंज कबूल कर लेने चाहिए कि जिसका असर आने वाले दौर के लोगों पर कायम रहे। ना गज़वे मुता होती, ना रोमन्स के इलाके फतह होने थे, असल में हज़रत उमर फ़ारूक के लिए रास्ते हमवार हो रहे थे। तो लिख लीजिए, कभी कभी अल्लाह ताला आपसे कोई काम इसलिए करा रहा होता है कि आपके बाद आने वाली नस्लों के लिए वो एक किस्म का फ्यूल बन जाए। तो अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानकर बड़े से बड़े मामले को बिस्मिल्लाह कहकर ओके कीजिए, लब्बैक आप कहिए, मदद अल्लाह की होगी। तो यहाँ गज़वाए मुताज एक बहुत बड़ी जंग थी, पूरी हुई। नबी सल्लम की ज़िंदगी में कहाँ तफारिक बैठना और कहाँ तफारिक बिठाना। आप तो वो थे कि जो ख़ुद भी तड़पे और तड़पाया, और आपको इतने प्यारे साथी मिल गए कि जो एक प्रोजेक्ट के पूरे होते ही दूसरे पे तैयार थे। तो जब मुता पूरी होती है, अब सुनिए आगे क्या हुआ। हम होते तो छुट्टी, रिलैक्सेशन और पता नहीं क्या कुछ मांगते। नहीं, सरिया ज़ातुस्सलासिल शुरू होता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार का मुता के सिलसिले में मुशारिफ शाम के अंदर रहने वाले अरब कबाइल के मौक़िफ़ यानी पॉइंट ऑफ व्यू का इल्म हुआ कि वो मुसलमानों से लड़ने के लिए रूमियों के झंडे तले जमा हो गए थे, तो आपने एक ऐसी हिकमते बालेगा की ज़रूरत महसूस की। यहाँ भी देखिए, हिकमते बालेगा आ गया, और ये लीडरशिप से ही आती हैं चीज़ें, वक्त के साथ, तजुर्बे के साथ। मुराद ये है कि गज़वे मुता के फ़ौरन बाद अब मुसलमानों की कुछ ऐसी चीज़ें शुरू होने लगी हैं कि जिसके बाद खबरें आनी शुरू हो गई हैं। यही सब गज़वे तबुक का फ्यूल बनेगा, आगे जाकर हम देखेंगे। तो अल्लाह के नबी को अल्लाह ने वाकई हिकमत बालिगा दी हुई थी। जिसके ज़रिए एक तरफ तो इन अरब कबाइल और रूमियों के दरमियान तफरका पड़ जाए और दूसरी तरफ ख़ुद मुसलमानों से इनकी दोस्ती हो जाए, ताकि इस इलाके में दोबारा आपके ख़िलाफ़ इतनी बड़ी जमीयत फराहम ना हो सके। यानी गोया कि अल्लाह के नबी ने मुस्तकबिल को सामने रखते हुए एक बड़ा दिलेराना फ़ैसला किया। इस मकसद के लिए आपने अमर बिन आस रदी अल्लाह अन्हों को मंतखब फरमाया, क्योंकि इनकी वादी कबीला विलास से ताल्लुक़ रखती थी। चुनाचे आपने जंगे मुता के बाद ही यानी जमादी उलाखीरा सन 8 हिजरी में इनके दिल को नरम करने यानी इनकी तालीफ़ कल्ब, मुराद है कि जब कोई इस्लाम की तरफ इंक्लाइंड हो तो उसको फिर थोड़ी सी मुराद दे दी जाए, मुराद चाहिए कि दिल को नरम करने के लिए हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह अन्हों को इनकी जानिब रवाना फरमाया। कहा जाता है कि जासूसों ने ये इत्तला भी दी थी कि बनु कदाया ने अतराफ़ मदीना पर हल्ला बोलने के इरादे से एक नफरी फ्राहम कर रखी है, लिहाजा आपने अमर बिन आस को इनकी जानिब रवाना किया। मुमकिन है दोनों सबब इकट्ठा हो गए हों। पता क्या चला कि कभी कभी कुछ जंगों का एक से ज़्यादा सबब होता था, और जब दो तीन चीज़ें जमा हो जाएं तो उसको फिर प्रायोरिटी पे लेना, ये भी इससे सीखा जा रहा है। यानी आप सीरत में से नबी सल्लम की लीडरशिप सीखिए, बस इस वक्त तो आपको ये देखना है, क्योंकि आप भी कल के लीडर्स हैं इंशाल्लाह। और हिकमतुल बालिगा आपको वाकई लीडरशिप सिखाएगी भी, और आप ऐसे लीडर भी बनेंगे कि जो लोगों को काबू पा सके, जो मुअसर हो मुतासिर ना हो। और इसी तरह जब आपको फॉलोअर बनना पड़े तो आप समेना वाताना वाले बनकर रहेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर बिन आस रदी अल्लाह अन्हों के लिए सफ़ेद झंडा बांधा और इसके साथ काली झंडियाँ भी दीं, और इनकी कमान में बड़े बड़े मुहाजरीन और अनसार की 300 नफरी देकर इन्हें रुख्सत फरमाया। यानी 300 लोग इनके साथ गए, इनके साथ 30 घोड़े भी थे। आपने हुक्म दिया कि बली और अज़रा और बलकीन के जिन लोगों के पास से गुज़रें इनसे मदद के ख्वाहों, यानी रास्ते में लोगों को अपना साथी बनाइए और उनसे मदद लीजिए। वो रात को सफ़र करते और दिन को छुपे रहते। जब दुश्मन के करीब पहुँचे तो मालूम हुआ कि उनकी तो जमीयत बहुत बड़ी है, यानी दुश्मन की तादाद इनसे बहुत ज़्यादा थी। इसलिए हज़रत अमर ने हज़रत राफे बिन मुकैस जोहनी को मदद तलब करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बैदा बिन जराह कॉलम यानी झंडा देकर इनकी सरकर्दगी में यानी इनकी लीडरशिप में 200 फौजियों की मदद पहुँच फरम 200 फौजियों की मदद रवाना फरमाई, जिसमें रूसाए मुहाजरीन मसलन अबू बकर और उमर और सरदारान अंसार रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन भी थे। हज़रत अबू बैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया गया कि अमर बिन आस से जा मिले और दोनों मिलकर काम करें, इख्तलाफ ना करें। वहाँ पहुँच कर अबू बैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इमामत करनी चाही, लेकिन हज़रत अमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि आप मेरे पास मदद के तौर पर आए हैं, अमीर मैं हूँ। अबू बैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनकी बात मान ली और नमाज हज़रत अमर ही पढ़ाते रहे। यहाँ खूबसूरत नुक्ता है तरबियत का। बस दफ़ा एक बंदा अपनी ड्यूटी पर होता है और बाद में कुछ और लोग भी उसमें ऐड हो जाते हैं तो मुगलते होते हैं। यहाँ देखिए अल्लाह के नबी को अंदेशा था ना कि हैं तो ये इंसान ही ना, इंसानों का इंसानों के साथ चलना, कामयाबी के साथ ये दो गाड़ियों का आपस में टकराए बगैर गुजर जाना, इससे बड़ा कारनामा है। आगे जा जाकर आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि जितने लोग दीन से हटते हैं अमूमन एक दूसरे को बर्दाश्त न करने की वजह और इसी तरह की कुछ और कमज़ोरियाँ होती हैं। इल्म सबको अच्छा लगता है, लेकिन अपनी ज़ात के साथ दूसरे का मैच हो ना हो, इससे बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो अल्लाह के नबी ने पहले से कह दिया कि अब यहाँ कोई गड़बड़ होगी, क्योंकि पहले एक ज़िम्मेदार थे, अब उसके पीछे एक दूसरे को भेज दिया। लेकिन कितनी बहादुरी है अबू बैदा की कि उन्होंने खुशी से बात मान ली। हालांकि आप जानते हैं कि अबू बैदा ज़्यादा बड़ी उम्र के और बड़े ज़्यादा सीनियर्स में से थे, लेकिन इन्होंने अल्लाह के नबी के नॉमिनेटेड जूनियर ही की बात मान ली। मकसद तो काम करना है, मकसद तो सिस्टम को सही रखना है, ये तो नहीं कि किसी एक की मोनोपोली और दूसरे की नहीं। बहरहाल मदद आ जाने के बाद ये फ़ौज मज़ीद आगे बढ़कर खुदाया के इलाके में दाखिल हुई और इस इलाके को रौनती हुई इसके दूर दराज हदूद तक जा पहुंची। आखिर में एक लश्कर से मुठभेड़ हुई यानी आमना सामना हुआ, लेकिन जब मुसलमानों ने इस पर हमला किया तो इधर उधर जाकर बिखर गए। क्या क्या पता चला कि जब कोई ऐसे मामले हो जाते हैं जिसमें इंसान को इंतशार का डर हो, तो अच्छा लीडर पहले से ही उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाता है। इसके बाद औफ बिन मालिक अशजई, जो कबीला अशजो से थे, रदी अल्लाह खानहो को कासिद यानी एलची बनाकर रसूलुल्लाह की खिदमत में भेजा गया। उन्होंने मुसलमानों की बसलामत वापसी की इत्तला दी और गजवे की तफसील सुनाई। क्या पता चला कि इसमें भी मुसलमान जीत गए। क्या खूबसूरत ये बात है, जिस पे गौर करें तो दिल खुश हो जाता है कि वो क्या ताकत थी मुसलमानों के हाथ में, कि हर जगह से उनको कामयाबियां मिल रही थी। खैर, ये जंग भी एक कामयाबी थी। ज़ाते सलासल, सीन को पेश और ज़बर दोनों तरह पढ़ना जायज़ है, यानी सीन को आप सलासल भी कह सकते हैं और सलासल भी कह सकते हैं। वादी कुरा से आगे खित्ते ज़मीन का नाम है। यहाँ से मदीना का फासला 10 दिन है। इब्ने इसहाक़ का बयान है कि मुसलमान कबीला जुज़ाम की सरहद में वाक़े सलसल नामी एक चश्मे पर उतरे थे, इसलिए इस मुहिम का नाम ज़ातुस्सलासिल पड़ गया था। आप देख ही रहे, या तो जगहों के नामों पर जंगे हैं या कुछ कुओं के, कुछ और इसी तरह की नस्बतों के नाम पर जंगे हैं। जैसे पीछे गजवा ज़ातुर्रिक़ाब पड़ा तो पट्टियां बांध कर लोगों ने ये जंग जीती थी। तो बहरहाल हर तरह के हालात और वाक़यात के साथ ये सब हुआ। इसके बाद एक छोटा सा सरिया है जिसको सरिया खदरा कहते हैं, शाबान 8 हिजरी में हुआ। इस सरिये का सबब यह था कि नजद के अंदर कबीला महारब के इलाके में खदरा नामी एक मुकाम पर बनु गतफान लश्कर जमा कर रहे थे, लिहाजा इनको इनसे यानी इनका मुकाबला करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हो को 15 आदमियों की जमीयत देकर रवाना किया। यानी अबू कतादा लीडर थे, इमाम थे, और बाकी लोग इनके साथ फॉलोअर्स थे। उन्होंने दुश्मन के कई आदमियों को कत्ल और क़ैद किया और माल गनीमत भी हासिल किया। इस मुहिम में वो 15 दिन मदीना से बाहर रहे। तो यहाँ पे वो छोटी बड़ी जंगों का और गजवात का सिलसिला पूरा हुआ जो फतह मक्का से पहले थी। एक एक में हज़ारों सबक है। अपने लिए फ़िलहाल ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें हिकमत दे, हम इन सारी चीज़ों को पढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को समझ सकें। इंशाल्लाह अगला टॉपिक गज़वे फ़तेह मक्का काफ़ी दिन तक चलेगा। बहुत ही मॉरल्स एंड लेसन्स हैं उसमें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।